खौफ व खशियत। हम इस चैप्टर में से आज जो टॉपिक देखेंगे वो क्या है कि मोमिन में खौफ को पैदा करने वाले क्या असबाब हैं। हम सब ने खौफ इलाही के बारे में बहुत कुछ सुना, पढ़ा, देखा, अपने ऊपर इसको रखा। अब हम देखेंगे कि क्या असबाब हैं, क्या मीन्स हैं, क्या वो टूल्स हैं कि जिसकी वजह से हम अपने अंदर अल्लाह ताला का खौफ पैदा करें। और आपके जो सवालात थे पिछले हिस्से में कि आप अपने बच्चों के अंदर भी अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहते हैं ना, तो ये अब उसका जवाब है। जो चीज़ मेरे अंदर अल्लाह का खौफ लाएगी ना, वही मेरे बच्चों में भी लाएगी, वही मेरे भाइयों में भी लाएगी, और हर इंसान के लिए यही रूल्स हैं। तो जिसको ये मिल गए इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। आप कह लीजिए कि आज नमाज़ें, रोज़े, इबादत के बावजूद हमारी ज़िंदगी में एक खला है, एक कमी है, और वो कमी क्या है? खौफ खुदा की। अभी तक हमें वो रेसिपी नहीं मिली कि जिसके ज़रिए हम अपने अंदर खौफ व खशियत पैदा कर सकें। तो आइए देखते हैं, हम 20 डिफरेंट असबाब देखेंगे, जिसमें पहला सबब या पहली चीज़ वो क्या है कि अल्लाह की अजमत और जलालत की शान को याद करना। यानी अल्लाह कितना बड़ा है, हम दिन रात कहते हैं अल्लाहु अकबर, लेकिन हकीकत में अल्लाह कितना बड़ा है इसका एहसास दिलाना है। जितना अल्लाह ताला के वो नाम जो उसकी माइटीनेस को, उसके द बिगेस्ट होने को साबित करें, एंड पे दिखाते हैं आपको। यानी कभी ऐसी वीडियोस देखते हैं ना, तो उसको देखकर भी दिल को कुछ होता है, हाय अल्लाह इतना बड़ा है, उसने इतना बड़ा सूरज बनाया, इतना बड़ा चांद बनाया। तो अल्लाह ताला के नाम मसलन अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल काहिर, इन सब पे गौर करें। और अगर आप अपने लिए छोटी सी एक्टिविटी ले लें, ये नाम बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 15-20 मिनट की शायद ऑडियो होगी, इनकी सिर्फ सुन लें। यानी हमने अल्लाह के नामों पे तो बहुत बात की पीछे भी, अब सिर्फ वो नाम सुने जिससे अल्लाह का रूप दिखे, अल्लाह की कहारियत, उसके गलबे की बात, वो कायनात में क्या कर सकता है, कैसे है, अल्लाह आसमानों को ज़मीन पे गिराने से अगर ना रोके तो कौन रोके, अल्लाह की शान क्या है। बग़ैर आमदिन तरव नहा, सूरत रात में आता है कि तुम बग़ैर सतूनों के आसमान को खड़ा देखते हो, तो कौन सी ज़ात है जिसको थामती है। तो इस तरह के नामों पे गौर कीजिए जिसमें से अल्लाह ताला का बड़ापन दिखेगा। और आप देखेंगे कि जितना हम इन चीज़ों को देखते हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर अल्लाह का खौफ आएगा। सूरत आल इमरान आयत 28, व युहज़्ज़िरुकुम अल्लाहु नफ्सा। फिर इसी तरह सूरत ज़ुमर, वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्री वलर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावात मतवी या तुम भी यमीन ही, कि जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी वैसी कदर इन्होंने नहीं की। सारी ज़मीन क़यामत के दिन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके दाएं हाथ में होंगे। इमेजिन करें, हम ऐसे में चीज़ों को विजुअलाइज़ नहीं करते, बस सुनते हैं ओके ठीक है होगा। आप विजुअलाइज़ करें, ये जब भी पढ़ते हैं, और कुरान के अंदर आयते भी मौजूद है ना कि अल्लाह ताला पूछेगा कि आज किसकी बादशाहत है, कि अल्लाह ताला पूछेगा किधर हैं लोग, ऐनल जब्बारून, ऐनल कहारून, तो उस वक्त कोई होगा ही नहीं जो जवाब दे। तो अल्लाह ताला कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। तो इस तरह की चीज़ों को सुन के अल्लाह का रोब डालें, और इसके लिए अब ये करें कि कुछ दिन तक अपने दिल में बस यही रखें कि अल्लाह है ही पकड़ने वाला। इन्ना बदश रब्बी कल शदीद, कुरान में आता है अल्लाह की नज़र तुम पे है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इन्ना रब्बक लबिल मिरसात, अल्लाह तुम्हारी घात लगाए हुए। इस तरह की सारी चीज़ों को नोट करें, और आप महसूस करके देखेंगे कि जब कुछ आप सोचेंगे ना, तो आपका जहन खुलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पे खड़े थे, इब्ने उमर की ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने इसी आयत की तिलावत की, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और फिर इसके बाद फरमाया अनल जब्बार, मैं गालिब और ज़ोरावर हूँ, अनल मुतकब्बिर, मैं बड़ाई वाला हूँ, अनल मलिक, मेरी बादशाही है, अनल अज़ीज़, मैं गालिब और ज़बरदस्त हूँ, अनल करीम, मैं बहुत सखी हूँ, और मेरी ज़ात बड़ी मौज़ज़ और मुकर्रम है। इतना सुनना था कि मिंबर नब्बे इलाही पर राशा तारी हो गया और ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, यहाँ तक कि हम लोगों को ये खदशा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लम को लेकर मिंबर मारे खौफ और खशियत के ज़मीन पर गिर जाएगा। यानी इस वक्त अब इस किस्म की स्पीचेस लोगों को देने की ज़रूरत है, दिल हिलाने वाले खुतबे, दिल काटने वाले नहीं। और ये भी एक नोट कीजिए, ये रिक्वेस्ट लिख के दीजिए, आपको शायद ये बात मालूम है कि नहीं, कि जो जुमे का खुतबा होता है ना, तस्कीर होता है इसका मकसद कि दिल हिल जाए। ऐसे मौक़ों पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की बात, मकसद हयात, और इसी तरह से जोश दिलाने वाला अंदाज था। यानी अगर आप खुतबात नबी देखें ना, तो आम तौर पे जैसे अभी इस वक्त हम बात करें तो हमारा एक लर्निंग टीचिंग स्टाइल है ना, हम स्कूल से बात कर रहे हैं करें। अब ये स्टाइल हर जगह नहीं चलेगा। जब पब्लिकली ऐसे लोगों पे दर्स दिया जाए कि जो बहुत ही दीन से दूर हैं, तो उसमें ज़रा इमोशनलिज्म होना चाहिए, जज्बात हो, जोश हो। इंशाल्लाह हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद सितंबर में जब आपका नूरला नूर में, तो आप लोग देखेंगे कि दावत देने में कितने डिफरेंट रंग होते हैं। हम जब एक ही लाठी से सबको हांकते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी बात का असर ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जब हम दावत के तरीक़ों को सीखते हैं, उसमें अल्लाह के नबी का तरीका ये हमें मिलता है कि जुमे के खुतबात आपके पुरजोश होते थे, जोश वाले, जज्बे वाले, और उस दिन लोगों का दिल हिल जाए। हर हफ्ते में एक रिमाइंडर है, कम हेयर, क्यामत आ रही है, देखो अपने आप को। फिर इसी तरह एक और मौके पे इब्ने उमर की रिवायत से पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यामत के दिन रब्बे करीम जिसकी सिफत जब्बार है आसमान और ज़मीन को अपनी मुट्ठी में लेगा। फिर अल्लाह के नबी ने इस तरह मुट्ठी बंद करके दिखाई, जैसे हाथ को बंद किया जाता है, और फिर मुट्ठी खोलते और बंद करते रहे इस तरह, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अल्लाह किस तरह मुट्ठी में आसमानों और ज़मीन को पकड़ेगा। अब आप कह रहे हैं इतने बड़े आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह की मुट्ठी में आएगी? तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि वसीया कुर्सी युहुस समावाती वलर, उसकी तो कुर्सी ने समा लिया आसमानों और ज़मीनों को। तो अब अल्लाह नोस दी बस ये कितने बड़े हैं, ये क्या है, मैं और आप इसका अंदाज़ा आज नहीं लगा सकते, लेकिन इसको सुनकर दिल में रोब तो आता है। और मैं जब खाली ग्लोब देखती हूँ ना, अभी आगे भी आ रहा है अल्लाह ताला की कायनात पे गौर पे बात, लेकिन मैं जो अपने दिल में अल्लाह ताला की खशियत महसूस करती हूँ ना खाली ग्लोब को देखकर। कभी आप देखें जहाज़ में जब आप बैठते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस होती हैं विंड स्क्रीन अगली सीट के पीछे जो है, क्या आप उसमें वो जहाज़ की मूवमेंट देखते रहे? सबसे ज़्यादा मेरा पूरे वक्त में वही खुली रहती है, और मैं उस वक्त सोच रही होती हूँ, बल्कि इस दफ़ा तो वो जो जहाज़ है उसमें आप उसको मूव करें तो पूरा रोटेट करता है जिधर से, तो मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल यही आते याद आती है, अल्लाह ने बनाया इतना बड़ा। फिर मैं देखती हूँ इतना समंदर, सबसे ज़्यादा ज़मीन पर पानी है। फिर मैं उसको देखती हूँ कि ये पानी किधर जुड़े हुए हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क से पानी के बग़ैर अलग है ही नहीं। अगर ये शिपिंग्स ना होती पानी के ज़रिए, तो हो सकता है कम्युनिकेशन इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जो आ जाए। तो अल्लाह की बड़ाई आती है। स्क्रीन सेवर्स होते हैं ना कंप्यूटर्स पे, आप उस पर ग्लोब डाल लें, उसको देखा करें, और उसको अल्लाह ताला की बड़ाई के साथ सोचें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को ये सब दिखा रहे थे तो फरमाया कि अल्लाह ताला कहेगा कि मैं जब बारू, मैं जोरावर हूँ, मैं साहिब अजमत हूँ, ज़मीन पर बसने वाले जाबिर, काहिर, मतकब्बिर और मगरूर कहाँ हैं, कहाँ होंगे उस वक्त सारे? सब अल्लाह के आगे खड़े होने को तैयार है, ज़रा सामने आए। फिर अल्लाह के नबी खुतबे में कभी दाएं देखते कभी बाएं, यानी जोश वाला खुतबा था, अपनी जगह स्टिल नहीं था, यानी कभी इस तरफ देखते कभी ऐसे देखते, यानी जोश था आपकी बात में। और रावी कहते हैं कि मैंने देखा कि मेंबर का जो नीचे का हिस्सा था वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, हत्ता कि मुझे ख़तरा हुआ कि मेंबर रसूलुल्लाह को लेकर ज़मीन पर ढेर हो जाएगा। तो मीठी मीठी बातें हर वक्त नहीं, किसी वक्त जज्बात को उभारने वाली बातें भी। अबू ज़र से एक रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सातों आसमानों की कुर्सी के साथ ऐसी ही मिसाल है जैसे दरवाजे का कुंडा सुनसान बियाबान और चटियल मैदान में पड़ा हो, और अर्श को कुर्सी पर ठीक इस तरह फोकियत हासिल है जिस तरह वसी और चटियल मैदान को दरवाजे के कुंडे पर हासिल है। क्या हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? ना हम कुर्सी का कर सकते हैं, ना अर्श का कर सकते हैं, ना हम सातों आसमानों का करते हैं। इसीलिए आप पढ़ते हैं कुरान में सूरह सबा 23 में कि फरिश्ते जो अल्लाह ताला के करीब रहते हैं ना, अब मैं और आप तो नीचे हैं, तो बहुत सारे फरिश्ते जो वर्कर्स हैं और जब भी कोई काम करता है तो उसको काफ़ी हद तक करीब से बैठना पड़ता है, तो जो फरिश्ते सबसे ऊपर है ना, वो अल्लाह से कितना खौफ खाते हैं। हत्ता इज़ा फुज़िया अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम क़ालुल हक़, यहाँ तक कि जबकि इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाए तो पूछते हैं तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया, तो जवाब देते हैं कि हक फरमाया। यानी जब अल्लाह सुबहान तआला फरिश्तों को कोई काम देते हैं, अब इमेजिन कीजिए ना आसमानों पे फरिश्ते काम कर, बारिश बरसानी है मीकाइल को कह दिया गया, किसी की जान निकालनी है तो वो मलकुल मौत को कहा, अब जब अल्लाह ताला उनको कोई ऑर्डर देते हैं ना तो फरिश्ते उस वक्त बेहोश हो जाते हैं उसकी हैबत से, उसके खौफ से। फिर जब थोड़ी देर बाद न्यूट्रल होते हैं तो फिर जो होश में आते हैं ना, वो दूसरों से पूछते हैं माजा काल रब्बू को, क्या कहा तुम्हारे रब ने, क्या बात की, किधर हुई, क्या कालू माजा, तो फिर वो कहते हैं कि रब ने हक कहा। फिर उनको अपना अपना काम सूझ चुका होता है। तो ये आसमानों पे जो कुछ हो रहा है अगर आज इस दुनिया में होने लग जाए तो हम में से कोई अल्लाह की नाफरमानी ना कर सके। तो लिहाजा पहली चीज़ क्या है, खौफ और खशियत पैदा करने के लिए अल्लाह की बड़ाई के एहसास, जब अल्लाह को बिल्कुल ही बराबर का समझ लेते हैं ना, और नौजुबिल्ला बाज़ औक़ात तो अपने से भी छोटा समझते हैं, तो फिर हम अल्लाह से नहीं डरते। बच्चों के साथ भी याद रखिए ये मामला रखे, बच्चों को जब बहुत ज़्यादा नीचे दर्जे पे करके अल्लाह का जिक्र कर देते हैं और बेदबी और कुरान की तंजीम नहीं है, जाय नमाज रुल रहे हैं पाँव में, मैं कभी जाय नमाज को कभी मिस हैंडल होता देखो तो मुझे दुख होता है, क्योंकि ये एक रिचुअल है। इसी तरह टोपियाँ ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, या नमाजों के दुपट्टे रुल रहे हैं, या नमाज की जगह मैसी है वहाँ बहुत, और जब स्पेशली कभी ऐसी दीनी जगह पे जाके ऐसे रूम्स को डिसऑर्गनाइज देखूँ तो मैं सोचती हूँ यहाँ बैठ के तो अल्लाह को ही नहीं याद आता। मैं तो यही देखती रहूँगी गर्द कितनी पड़ी हुई है और किताबें कितनी टेढ़ी मेढ़ी हैं, पहले इनको ठीक करो ताकि रूहानियत का एहसास तो हो। तो अल्लाह की बड़ाई का एहसास इंशाल्लाह हमारे दिलों में खौफ लाएगा। फिर दूसरी चीज़ कलाम अल्लाह, पहले अल्लाह की ज़ात है तो अब कलाम अल्लाह है, उसमें तदब्बुर और तफक्कुर पैदा करना है, और वो क्या है, कुरान, जो इस वक्त हम पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुरान हमारे सामने आता है उतना अल्लाह की बड़ाई का एहसास होता है। इमाम इब्न कय्यम की एक कोटेशन है, उसका खुलासा क्या है, कहते हैं कि एक बंदे के लिए दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी की खातिर सूदमंद और कामयाबी से करीब करने वाली चीज़ कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर करने के अलावा और कोई हो नहीं सकती। आप देखिए कि आप कुरान की तफसीर की क्लास में बैठते हैं ना, 2-2.5 घंटे आप मुसलसल बैठते हैं, जहाँ भी तफसीर होती है लाइव, या अगर मोस्टली रिकॉर्डेड भी अब जो चलती है, तो उसमें आप देखते हैं कि तफसीर का सेशन ऑलमोस्ट 2 आवर्स का होता है, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई थकता नहीं, किसी को कुछ नहीं होता। आप में से कई लोग अपने आप को सिख फील करते होंगे, घर में थे सिख थे, जूँ ही आके कुरान की क्लास में बैठे तभी ठीक हो गए। एक दफ़ा बस घर से निकालना होता है खुद को, डॉक्टर की दुकान पे भी जाना मुश्किल लगता है ना बीमार शख्स को, कोई दूसरा ही पकड़ के ले जाता है, कभी आपको अपनी तबीयत में कोई कसमलाहट और कोई सुस्ती और कोई बोझलबंदी के ना, बस अपना हाल पूछने से पहले जल्दी से बस्ता उठाएं, स्कूल में आ जाएं, सोफे पे लेट जाएं, पीछे लेट जाएं, उधर लेट जाएं, कुछ भी ना करें, आप देखेंगे कि आप दूसरी घर में रहने या आप बेकार किसी जगह बैठने से अपने आप को आसूदा महसूस करेंगे, क्योंकि कुरान में जब गौर व फिक्र होता है ना, तो इंसान को अपने गम और अपने दुख जो हैं वो भूलने लगते हैं, क्योंकि इसके मानी बड़े खूबसूरत हैं, इसके अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं, कहीं उभार होता है जोश में, कभी डरावे होते हैं, कभी अजाब है, कहीं जन्नत कहीं जहन्नम, तो वो एक खूबसूरत सा सिलसिला चलता रहता है नेचुरली, जिसकी वजह से फिर हम लोग अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। इसी तरह इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह भी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर अक्ल व दानिश से बहरामंद मोमिन बंदा सूरह हदीद और सूरह हशर की आखिरी आयतें और आयतुल कुर्सी और इखलास की तिलावत करे, फिर इसमें तदब्बुर और तफक्कुर से काम ले, इसके मानी और मफहूम पर गौर करके असल मकसद तक पहुँचे, तो खशियत इलाही और खौफ खुदाबंदी के मारे इसका दिल फट कर रेजा रेजा हो जाए, और इसकी अक्ल अल्लाह की अजमत शान के तसव्वुर से हैरान और दंग हो जाए। और ये बात बहुत सच है, इन्होंने जो सूरतें लिखी हैं जिसमें सबसे पहले सूरह हदीद है, अगर आपको तर्जमा के बगैर समझ आती सिर्फ तिलावत सुन लें, यकीन करें मुझे ऐसे लगता है डांट खा के उठी हूँ बार बार, वमा लकुम अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शु कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, जोश पैदा होता है, और ख़ास तौर पर जो इसकी आखिरी आयतें, फिर सूरह हशर की आखिरी आयतों में आपको पता है कि अल्लाह सुबहान तआला की बहुत सारी सिफ़ात हैं, आयतुल कुर्सी में भी सिफ़ात हैं, सूरह इख़लास में भी हैं, जिस सूरत के शुरू या आखिर में अल्लाह की सिफ़ात आती है ना, उसके अंदर तस्कीर का पहलू पाया जाता है, अल्लाह का रोब, अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास होता है। तो कुरान पाक पे गौर करें। अब आप कहेंगे ये जो कुरान की क्लास होती है इसमें गौर करें कब करें, अकेले में बैठे लफ्जी तर्जमा आता है सादा कुरान खोल लें, इधर देखें उधर देखें और इसमें गौर व फिक्र करें, ये सूरत कैसी है, ये आयतें कैसी हैं, इंशाल्लाह आप अपने अंदर एक हरकत महसूस करेंगे। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह के नबी के कलाम में, पहले क्या था कलाम अल्लाह, तब है कलाम मुस्तफ़ा, और सीरत में गौर व फिक्र करें, खशियत इलाही मिलेगी आपको, क्योंकि अल्लाह के नबी सबसे बड़े मुत्तकी थे, डरने वालों में सबसे ज़्यादा आगे थे, सबसे ज़्यादा आप अल्लाह ताला के लिए खुशू रखने वाले थे। तो जब हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है, जैसे रहबर कामिल एक सीरीज़ है तो उसमें अल्लाह के नबी के बारे में एक टॉपिक है, आप एक जाहिद के सूरत में, जोहद था यानी दुनिया से दूर थे, फिर इसी तरह राहिब यानी अल्लाह के साथ अपना खौफ का मामला रखने वाले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, और वो हदीस आपने बहुत दफ़ा सुनी होंगी कि आप जब नमाज पढ़ते थे तो आपका सीना हंडिया की तरह खोलता था, तो आप ही सोचेंगे अच्छा मेरा क्यों नहीं खोलता। सिर्फ आप सीरत के नाते से अपनी नमाज़ों को टेस्ट करके ठीक करें, काफ़ी हद तक देखेंगे आपको अल्लाह का खौफ होगा। बस जैसे अभी देखें हम जोहर की नमाज़ जहाँ मिल के पढ़ते हैं ना, फ़र्ज़ पढ़ेंगे, सुन्नतों के लिए अकेले पढ़े, कोने में कोई भी नहीं, इधर भी है तो ठीक है, इमेजिनेशन में रखें कि मैं अकेली हूँ, मैं अल्लाह के आगे खड़ी हूँ। फिर कभी ओपन एयर में पढ़ें, ईशा की नमाज है, अंधेरा होता है, घर में कोई नहीं, बाहर कोई नहीं, बैकयार्ड में पढ़ें, घर के बाहर कोई बालकनी है वहाँ पढ़ के देखें, कुर्बत महसूस होगी, इंशाल्लाह आप इससे अल्लाह का कुर्ब पाएंगे। फिर अगली चीज़ क्या है कि वाजिबात की अदायगी में कोताही से किनारा कशी करें। अल्लाह ने जो काम हम पे फ़र्ज़ कर दिए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसको अदा करें। कमी बेशी होती है ना तो अल्लाह का खौफ भी चला जाता है। जितना आप इन चीज़ों में पर्टिकुलर होंगे, इनको करने में आप पाबंद होंगे, उतना अल्लाह का खौफ आएगा। भला क्यों? आपको पता है कि आपके ये सारे पेपर्स चेक हो रहे हैं। जब आपको ये पता है ना कि नमाज़ पढ़ी, अब अल्लाह तक गई, देखी, उसने सुनी, तो आपको अगली नमाज से पहले फिर खौफ आएगा। इसको तसव्वुर में लाएं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका पेपर तो हो लेकिन उसको चेक करके वापस ना मिले, जो उसको शक हो कि मेरे पेपर इधर उधर कहीं पड़े रहते हैं, कोई चेक नहीं करता, क्या इम्तिहान के नाम से वो इतना खौफजदा होगा? नहीं होगा ना। इसी तरह हम जब नमाज़ें इसलिए पढ़ते हैं ना, मैंने पढ़ी तो पढ़ी है मैंने, आज से अपनी नमाज को क्या कहें, उधर जाके कैसी कबूल हुई होगी। वो सिस्टर जिनके हम सुबह शेयरिंग की बात कर रहे थे इससे पीछे, तो उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि जो भी इबादत कर रहे हैं, जो भी अल्लाह के रास्ते का काम कर रहे हैं, बाद में यही लगता है कि ये अल्लाह को दिखाने के काबिल तो नहीं है ना, तो हमने किया है, अल्लाह को कैसे दिखाएं? तो फिर दिल करता है कि इसको और अच्छे तरीके से करें, आसान दर्जे पे करें। तो अपनी इबादत को सजाएं, संवारें, सदक़े को खुशबू लगा कर दें, रोज़ा रखें तो ऐसा लगे कि आपका रोज़ा ही नहीं है, नमाज पढ़ें तो ऐसी नमाज हो कि जिसको पढ़कर वाकई लगे कि अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए हैं। फिर इसी तरह मेरे अमल कबूल नहीं होंगे, इस बात का खौफ पैदा करें, क्योंकि हम बहुत वो चौड़े हो जाते हैं ना, मेरी किसने रिजेक्ट करनी है, शक को ना कि ये चीज़ रिजेक्ट हो गई तो फिर फिक्र होती है। जब तक अपने अमाल की कबूलियत का यकीन ना हो, इंसान अच्छे काम कर ही नहीं सकता। सूरत मायदा आयत 27, इन नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। तो अमल तो बहुत सारे हम करते हैं, कोशिशें करते हैं, रमज़ान में भी उसके बाद भी, लेकिन कबूल कब हो रही हैं? आज से काम कर लें, जो भी नेकी करते हैं, माशाल्लाह आप सारा दिन नेकियां कर रहे होंगे, उस हर नेकी को करते हुए ये सोचें कि जब अल्लाह के पास पहुँचेगी तो कैसी लगेगी। लाइक अ गिफ्ट बॉक्स समझ लें, आप अपने नोट्स में छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स बना के उसमें नमाज़ें लिख लें, रोज़े रख लें, कोई और चीज़ें रख लें, और आप फील करें इन सारी चीज़ों को जब दूसरे एज पे रिसीव किया जाएगा तो उस वक़्त क्या महसूस कर रही होंगी, क्या मेरी नेकी अल्लाह को दिखाने के काबिल है भी कि नहीं है। फिर इसी तरह अपने गुनाहों को याद करके तौबा करना, ये अल्लाह का खौफ देता है। इंसान के गुनाह जो होते हैं ना, उसके अंदर गिल्ट पैदा करते हैं, नदामत का एहसास होता है, तो जब आप इन गुनाहों पर आंसू बहाते हैं शर्मिंदगी के, तो अगली दफ़ा गुनाह करने से आप रुक जाते हैं, क्योंकि इससे फिर इंसान को फिक्र लग जाती है कि मैं अपने इस गुनाह की वजह से अल्लाह की नज़रों में शर्मिंदा होऊंगा। देखिए, अगर हमें वापसी याद रहे ना, वापसी, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है, बस इसके साथ आप देखेंगे आपकी सोच बदल जाएगी। फिर इसी तरह मेरा अंजाम क्या होगा, इसके बारे में गौर व फिक्र करना अल्लाह का खौफ देता है। कभी तो बैठ के हर एक सोचता ही होगा ना, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किधर जाऊँगी, एक दिन मेरी रूह कब्ज़ की जाएगी, एक दिन मलकुल मौत आएगा, मेरी हिचकी निकलेगी, मेरी रूह निकलेगी, मेरी टांगे ठंडी हो जाएंगी, फिर सब मिलाकर मिलकर मुझे गुसल देंगे, फिर मुझे कफन में डालेंगे, फिर मेरे प्यारे ही मुझे अपने कंधों पर डालकर मुझे कब्रिस्तान में ले जाएंगे, मेरा नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, फिर मुझे कब्र में डाल देंगे, फिर मुझे तन्हाई में छोड़ देंगे, फिर वहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, मेरे शौहर मेरे साथ नहीं होंगे, मेरा कोई प्यारा मेरे साथ नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, मलकुल मौत के बाद ये सारे मरहले हुए, अब कब्र में गई, अब मुनकर नकीर आ रहे हैं, फिर जहन्नम में या तो जन्नत की खिड़की होगी या जहन्नम की, ये सोचा करें। जितना ये सोचेंगे ना, उतना एक तो दुनिया में जो हाल है उस पर आप शुक्र करेंगे कि अभी भी एक वक्त है जिसको मैं कबूल कर सकती हूँ। फिर आप कब्र के अंदर के बाद हशर के मरहले सोचिए, फिर हशर के अंदर ये होगा, वो होगा, गर्मी होगी, लोग होंगे, और फिर वहाँ मेरा हिसाब हो रहा है। इस पर एक सीरीज़ भी है, आपने एक बुक पढ़ी होगी गालिबन, और जब ज़िंदगी शुरू होगी, मेरा यही नाम है इस बुक का, अबू यहया की बुक है, तो मैंने पढ़ाई थी, उसके आखिरी दो चार चैप्टर रह गए हैं, तो वो स्टोरिकली हर जगह आपको खड़ा करते हैं। आप पुलसरात पे खड़े हैं, अब आप मैदान हशर में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, ताकि आप अपना हिसाब दें। तो विजुलाइज़ करें इन चीज़ों को, और आप अपने बच्चों को भी प्यार प्यार में इस तरह गैर महसूस तरीके से अल्लाह का खौफ दिला दें कि उनका दिल खींचे। और एक बात याद रखिए, हक में अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है। कल किसी वजह से नॉर्वेजियन क्लास की जो बच्चियां थी उनको मैंने कुछ वक्त लिया, मैं लेती नहीं, मुझे पता है कि जब नॉर्वेजियन क्लास है तो वही रहे, लेकिन मैंने कहा ज़रा ट्रायल तो करके देखती हूँ। तो और भी जो लोग थे इनके साथ उर्दू सेशन में, मैंने उन बच्चियों को भी बिठा लिया। तो मैंने उनसे बाद में सबसे पूछा कि आपको फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने कहा मैं बहुत फ़ायदा हुआ। छोटी छोटी बच्चियाँ, लेकिन उनको फ़ायदा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बात ही वो की थी जो कि हम सब के लिए ज़रूरी है। तो मत सोचिए कि हमें सुनने से फ़ायदा नहीं होता। अपने बच्चों को ऐसे आवाज सुनाइए, आप नॉर्वेजियन में 10 बातें सुना लें लेकिन आप उर्दू की भी बातें सुनाएं, कोई ऐसी चीज़ जिनका उनका दिल खुले। बाज़ दफ़ा जज्बात होते हैं, बाज़ दफ़ा इमोशंस होते हैं, तासीर होती है, बाज़ दफ़ा बहुत इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, बाज़ दफ़ा बहुत शोशा वाली बातें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के बात करने लिए आज हर जुबान में मौजूद हैं। नॉर्वेजियन का मुझे नहीं पता, इंग्लिश उर्दू को ज़्यादा फोकस करती हूँ। इंग्लिश में आपको हर तरह की बात करने वाले दिखेंगे, हंसने हंसाने वाले, बहुत लोग उनको सुनेंगे, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो बड़ी स्ट्रांग बात करते हैं लेकिन उसको यूथ नहीं पसंद करेगी, कुछ इमोशनल बात करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, इस तरह की अमेजिश से बच्चों से मुकाबला कराएं। अच्छा आज किसकी सुनेंगे, चले आज हम उनको सुनते हैं, आज आप इनको सुन लें, तो आप देखिएगा कि उनके लेवल को सामने रखते हुए छोटी छोटी चीज़ें पहले से चूज़ करें। शाम का वक्त, घंटे का बाद, आधे घंटे का, खाने के बाद, पहले अपने बच्चों के साथ बैठकर अल्लाह की बातें करें, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह आप देखिए अगली चीज़ क्या है, मौत के बारे में गौर व फिक्र करें। मौत एक बहुत बड़ी हकीकत है, मौत से ही तो अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा होता है। किसी को इससे मफर नहीं, कोई इससे जान छुड़ा नहीं सकता, इसका वक्त मुकर्रर है, कोई इसमें शक नहीं करता। रात को भी आ सकती है, दिन को भी आ सकती है, जागते में भी आ सकती है, सोते में भी आ सकती है, सर्दी में भी आ सकती है तो गर्मी में भी आती है। सूरह जुमा आयत 8 है, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, आप कह दीजिए जिस मौत से तुम जान छुड़ाकर भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुँच कर रहेगी। कैसे भागता है इंसान मौत से? दवाएँ खा लो, हेल्दी फूड खा लो, इंश्योरेंस करा लो, वक्त से पहले कुछ रेमेडीज़ ले लो, प्रिकॉशंस ले लो, और जब मौत आती है एक सेकंड नहीं लगता। मैं सोचती हूँ जितना आज के दौर में इंसान हेल्थ कॉन्शियस है, अगर इतना ईमान कॉन्शियस हो जाए तो ईमान तो सलामत हो जाता है। और जितनी हेल्थ की केयर करते हैं, ना तो कोई बीमार होना चाहिए आज के दौर में, ना किसी को मौत आनी चाहिए, लेकिन आप देखते हैं जितनी कोशिशें ज़्यादा हैं उतनी बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि नॉन मुस्लिम लोग हेल्थ कॉन्शियस क्यों होते हैं। आप भी देखते होंगे पूरे सेटअप है, वो ख्याल ही बड़ा अजीब है कि आप डॉक्टर पे जाएं ना, एक साल गुजर गया आप डॉक्टर पे नहीं गए। तो मैंने एक दिन बैठ के बहुत इस पे गौर व फिक्र किया कि आखिर क्यों। तो मुझे दो बातें समझ आई। पहली बात है कि जिसके पास कोई भी एक कीमती चीज़ होती है उसको वही सबसे ज़्यादा कीमती लगती है ना। नॉन मुस्लिम के पास ज़िंदगी ही एक दौलत है, कमोडिटी जिसको कहते हैं, या उसका रासुल माल के वक्त इंजॉय करो, मौत फ़ायदा दिस दैट करो। इसके बरक्स मोमिन की सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? ईमान। जितनी कोशिश नॉन मुस्लिम जान बचाने की करते हैं, अगर हम मुसलमान ईमान बचाने की करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्लें ना बिगड़ती। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इन मुल्कों में आकर अपनी जान की फ़िक्र करते, वक्त की फ़िक्र करते, डॉक्टर्स पे अपॉइंटमेंट है, रोज़ ही कोई ना कोई सर पे मुसीबत चली हुई है, लेकिन ईमान के टेस्ट नहीं कराते। ईमान का लेवल कम हो रहा है कि ज़्यादा रहा, उसको टेस्ट नहीं करते। तो उनके पास चूँकि है ही जान, तो वो तो जान ही लेंगे, हमारे पास ईमान है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये है कि वो कहते हैं यू लिव वंस, उनके लिए ज़िंदगी का दूसरा तसव्वुर नहीं है। हमारे पास क्या है? तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए। कल एक बड़ा दिलचस्प सा मैसेज आया एक साथियों में, पुरानी साथी हैं, ख़ुद को वो हिंदू कहती हैं, मूर्तियाँ बहुत जो भी उनके घर में इंतहाई डिप्रेशन में और तकलीफ़ में होती हैं। खैर उनके साथ चलती है, कल उनका एक मैसेज था, क्या हाल है, किधर है आप, इधर है उधर है, मैंने उनको बताया। दरसों में भी आती हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं। तो मुझे कहने लगी कि आई एम रियली इम्प्रेस फ्रॉम योर सेटअप ऑफ द क्लासेस, यानी जो पेल टॉक और जो उसने सुना हुआ है, तो देखो ना, मजहब तो एक ही होता है ना। तो जो आप अपना कुरान लोगों को पढ़ाती हो, तो तुम्हें, आपको पता है कि मैं भी तो गीता पढ़ाती हूँ, और वो गाती है। उसने हमारी कई जगह दरसों कैंट पे गाने की रिकॉर्डिंग की, हमद में ऐसे। तो कहती कि मैं भी तो अपनी वो किताब पढ़ाती हूँ ना, तो आई विश कि यू कैन डू दिस सेटअप फॉर माई कंप्यूटर, कि जिस सेटअप से तुम कुरान पढ़ा रही हो और आपकी क्लासेस का इतना बड़ा सेटअप है, तो मुझे भी कर दो, तुम्हारे हस्बैंड या कोई भी करता है, तो मैं भी उससे अपनी किताब पढ़ूँ। अब आप सोचिए मेरे लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा। उसका जवाब मैं क्या देती भला? छोड़ देती उसको उसके हाल पे, या कहती अच्छा वक्त नहीं है। अब आप सोचिए, ये गोया कि वो मेरे लिए एक सदका जारिया का अकाउंट खुलवाना चाह रही है, जिससे मैं लोगों को शिर्क सिखाऊँ। तो मैंने उनका है जवाब जो दिया दिलाया, मैंने उसमें कहा कि जी, वो दुखी भी रहती है और वो अपने भगवान को कई दफ़ा मार कूट के घर से निकाल चुकी है। जब दुखी होती है, डिप्रेशन में जाती है, अपनी सारी मूर्तियों को पकड़ के एक ट्रैश बैग में डाल के ना कहीं डाल आती है। फिर थोड़े दिन बाद जब उसका डिप्रेशन ख़त्म होता है ना, वो फिर उनको धुलाती धुलाती लगाती है। मैं उसके घर भी जा चुकी हूँ, तो एक अजीब सी वहशत आई मुझे उधर जाके। तो किस्सा मुझसे, मैंने उन्हें कहा कि जी आप बहुत ऐसी, जो भी उसको बात करके मैंने कहा, हाँ एक दफ़ा तुम ये भी देखो ना कि तुम अपने भगवानों से खुश नहीं रहती, तो एक दफ़ा इन सबको छोड़ दो, तुम अल्लाह के साथ बात करो, तो जिसे मुझे लगेगा ना तुम वही बात कर रही हो जो मैं कर रही हूँ, तो मैं खुद तुम्हारे घर आके तुम्हारा कंप्यूटर सेट कर दूँगी। लेकिन मैंने उसको इशारतन ये कहा कि येस आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट ओनली थिंग इज़ दैट कि जो तुम मैसेज दोगी वो ठीक कर लो, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पहले मैंने सोचा बुरा मान जाएगी, जवाब ना दूँ, खामोश रहूँ, बहाना कर दूँ, मैं इधर नहीं हूँ, मैं उधर नहीं हूँ, पर मैं क्यों करूँ? मेरे ये जुमले शायद उसको इस बात पे सोचने पे माइल करें, लेकिन मैंने ये सोचा कि उसके जहन में अपने मज़हब की कितनी सच्चाई है। एक मुसलमान को वो कह रही है कि तुम मेरे दीन की बात को आम करने के लिए मेरी मदद कर दो, तो इसका मतलब कि उसको सच्चा है ना कि जैसे मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, तुम भी अच्छा कर रही हो। तो वहाँ से मुझे फिर तकलीफ़ हुई कि बातिल से बातिल परस्त इंसान को भी यकीन नहीं होता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंसान को फिर किस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि लोगों को अल्लाह का खौफ देना है, अल्लाह की तरफ लेके जाना है, तो फिर अपनी मौत के बारे में गौर करो। और काफ़ी दफ़ा उसे काउंसलिंग भी हुई और भी तरीक़ों से, हर जगह यही मैसेज दिया कि सब कुछ आजमा चुकी हो ना, अब छोड़ दो, जस्ट फॉर ट्रायल तुम एक दफ़ा अपने आप को फोकस करो। लेकिन आपको पता है कि ये अल्लाह ही लाए तो बंदा आता है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब के लिए ये चीज़ें आसान कर दें। तो मौत को याद करने का हुक्म तो अल्लाह के नबी ने भी दिया, आपने फरमाया कि लोगों मौत को कसरत से याद किया करो, मौत लज्जत परस्ती को ख़त्म कर देने वाली है, क्योंकि कोई बंदा ऐसा ना होगा जिसने इसको ज़िंदगी की तंग सामानियों से दो चार होकर याद किया हो और उसे कुशादगी ना मिली हो, और जिस किसी ने वसत व फराखी के आलम में इसे याद किया हो तो इसने इस पर शिकंजा कस दिया। समझ आई बात आखिरी वाली? यानी अल्लाह को याद करो, क्योंकि मौत लज्जतों को ख़त्म करती है। बात सच है ना? किसी को बताओ कि उसने कल मर जाना है, तो क्या आज का दिन किसी शहवत में गुजारेगा? नहीं गुजारेगा। दूसरी बात है कि जो बंदा भी ज़िंदगी की मुश्किलात में मौत को याद करता है, उसको कुशादगी मिलती है। कैसे भला? आप देखिए ना, वो कहते हैं ना कि मर के बिना चैन पाया तो किधर जाएंगे, ये वो बात है। एक बंदा बहुत दुखी है, मौत को याद करता है, तो क्या लगेगा कि चलो मौत आएगी तो ये दुख ख़त्म हो जाएंगे। इसके बरक्स कोई बड़ी खुशी के आलम में खुशियाँ, मौज मस्ती, तो मौत ने इस पर अपना शिकंजा कस दिया। एक ये कि आप दुखी हैं और आपको मौत आई तो जान छूट गई दुख से, बीमारी से। एक ये कि आप बहुत खुश हैं, यू आर इन्जॉइंग योर लाइफ, तो मौत आई तो वो छिन गई ना। तो कौन से शख्स को मौत पे ज़्यादा मज़ा आएगा? जो दुखी था। लेकिन शर्त एक है कि उससे बड़े दुख ना आगे मौजूद हों। तो ज़िंदगी का हर गम मौत के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आखिरत ख़राब हो गई तो फिर मौत के बाद भी चैन नहीं आएगा। अरबी शायर हैं, उनके कौल हैं, कहते हैं सुनो मौत की घंटी बज चुकी है, मौत का फरिश्तादा यानी मौत का फरिश्ता हाजिर हो चुका है, लेकिन तुम्हारी तमन्नाएं हद से ज़्यादा हैं। मालूम होता है तुम्हें खौफ और डर से बराए नाम वास्ता रह गया। अगर तुम देखो कि कोई शख्स गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर मटक मटक कर चल रहा है, तो इसके शानों की जुम्बिश यानी हरकत से पता चल जाएगा कि वो इतराहट का शिकार है यानी सेल्फ प्रेजिंग, और इसकी हवस का ये आलम है कि अपनी उम्र से ज़्यादा ज़िंदा रहने की लो लगाए हुए, मगर इसका हाल ये है कि रोज़ बरोज़ इसके गुरूर और अकड़ में इजाफा ही होता जा रहा है। ट्रू और नॉट? बस दफ़ा इंसान को दुनिया में थोड़ी सी नेमतें मिलती हैं, उसको पाकर वो फिर और ही ज़्यादा अल्लाह ताला से दूर हो जाता है।